देवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आज हम श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंध, भगवान श्री रामचंद्र जी का सारे विश्व पर राज्य करना और जिस तरह हम सामाजिक राजकीय परिस्थिति से परेशान होकर हम कुछ हृदय में से तो ऐसी भावना व्यक्त करते हैं कि यदि हम भी राम राज्य में होते तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। लेकिन राम राज्य क्या है? राम राज्य में रामचंद्र स्वयं एक विशिष्ट उदाहरण बनकर हमारे समक्ष आए और हम मूढ़ मनुष्यों को मर्यादा का पालन करके हमें कैसे जीना है उसका उपचार बताया। तो इस अध्याय में काफी बातें बहुत गहराई पूर्वक समझने की आवश्यकता बनी रहती हैं। तो हम रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया है, वो कैसे आदर्शता बताकर काम करते हैं उसका थोड़ा सा परिचय करें। ज्यादातर हमें और कई लोगों जब रामचंद्र जी की बातें करते हैं तो बहुत सारी असमंजस की यानी कि कंफ्यूजन की स्थिति बताते रहते हैं, हमें पता नहीं क्या है। रामचंद्र जी ने जो सीता गर्भवती थी उसका वनवास क्यों भेज दिया? एक कोई धोबी के कहने पर जो गलत बातें करता था और सीता ने स्वीकारा भी क्यों? सीता ने तो कोई क्या कहते प्रतिरोध भी नहीं किया, यानी कि उसका कोई समझाने का भी प्रयत्न नहीं किया कि ये क्या कर रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुए रामचंद्र और सीता के बीच में। ये कैसी बात है? हमारे इस जमाने में ये कोई अनुरूप नहीं। हम सोच रहे हैं हम कितने आगे बढ़ गए, हम कितने ऊंचे विचार वाले हो गए हैं, लेकिन ये सबसे पुरानी बातें जो हैं, जब भगवान की सत्ता, भगवान की स्वतंत्रता इत्यादि पर हमें नजर करती है कि ये समझने के बजाय हम कुछ गलत ही मान्यता लेकर हम कंफ्यूज रहते हैं। कि हम स्पष्ट से भगवान रामचंद्र जी का जीवन चरित्र भगवान मानते हैं, इसके अलावा आगे नहीं बढ़ा सकते, यानी कि मान्यता का धर्म बन जाता है। इसलिए हम भगवान रामचंद्र जी की भक्ति करने में जरा झिझकते, न तो किसी का अनुसरण करते हैं, हनुमान जी का न तो अनुसरण करते हैं, न सीता का अनुसरण करते हैं, न तो भरत शत्रुघ्न का अनुसरण नहीं करते, न तो सुग्रीव का अनुसरण करते। ये कैसे ऐसे भक्त हो गए, इन लोगों ने कैसे भक्ति की और हम तो सिर्फ हनुमान के पीछे पड़े। कहीं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबीर जान की माता का इतना कहकर हम हनुमान जी के पीछे अपनी भौतिक काम वासनाओं के पीछे पड़े रहे, हनुमान जी के पीछे पड़े, तो ये ठीक नहीं। जिस ढंग से समझना चाहिए तो असंख्य रामायण का पाठ करने से फायदा नहीं है या बहुत सारी कथा सुनने से फायदा नहीं। इसलिए कल जैसे हमने स्पष्टता की कि परीक्षित महाराज के पास अब 2 दिन बाकी है, 7 दिन की मोहलत, भागवत कथा सारी हो रही है और 9वें स्कंद में रामायण की कथा आती है। भगवान राम और कृष्ण में भी भेद करने वाले असंख्य पड़े हैं, क्योंकि न तो तत्व जाने तो भगवान की महत्ता कैसे समझे। तो यहां कुछ स्पष्टता करने के लिए एक पिछला प्रसंग यहां वर्णन हो रहा है तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। श्री शुक उवाच, भगवान आत्मानम आत्मानम राम उत्तम कल्पैकै सर्व देवमयम् देव अभिजे यथा आचार्यान् वक्तपखे। अनुवाद और तात्पर्य सुनिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान रामचंद्र जी ने आचार्य बनकर आचार्य बना है, इन्होंने आचार्य को कुछ काम सौंपा कि हम पर अभी देखरेख रख, और बड़े धूमधाम से यज्ञ संपन्न किए। भगवान यज्ञेश कहलाते, यज्ञपति कहलाते हैं, और रामचंद्र जी स्वयं भगवान है और वो अभी यज्ञ कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या बताया है कि इस तरह उन्होंने स्वयं अपनी पूजा क्यों अपनी पूजा की, क्योंकि वे सभी देवताओं के परमेश्वर हैं। भगवान को भी अपनी पूजा करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? सुखदेव गोस्वामी क्या गलत बोलते हैं? भगवान रामचंद्र जी ने आचार्य बनाकर इनको कहो देखरेख रखे, देखो हम क्या कर रहे हैं, और उन्होंने स्वयं यज्ञ आरंभ की और यज्ञ में स्वयं अपनी पूजा की। कोई ऐसा यज्ञ कर सकता है? अब आप लोगों ने यज्ञ किया बाहर, किसकी पूजा के लिए करवाया? आपकी पूजा के लिए करवाया था या भगवान की? यहां भगवान स्वयं अपना यज्ञ कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी गलत नहीं बोलते, कारण देते हैं क्योंकि वे सभी देवताओं के परमेश्वर हैं। जैसे देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और किंकर नौकरों के भी यज्ञ करने पड़ते हैं। यज्ञ मीन्स सेक्रीफाइस, यज्ञ का अर्थ है त्याग, हमें कुछ त्याग देना है, और भगवान को बीच में रखकर उसको साक्षी देकर हमें अपनी कोई गलत आदतें हैं तो वो उसका त्याग करना पड़ता है, या भगवान की प्रीति के लिए ही अभी एक और यज्ञ संपादन होगा जो सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा या उसमें जोड़ने के लिए दूसरा यज्ञ होगा, यानी कि संकल्प अलग है, सही? एक ही यज्ञ में अनेक संकल्प नहीं हो सकते। तो भगवान की प्रीति के लिए हम यदि यज्ञ करते हैं तो एक बात हुई, भगवान स्वयं अपना यज्ञ करते हैं अपने लिए। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि सर्वाहरणम अच्युत तेज्या, एक श्लोक श्रीमद भागवत में ही चौथे स्कंद के 31 के अध्याय और 14 श्लोक में कहा गया है कि यथा तरोर मूल निश चिन्हन तृप्यंति तत्स्कंद भुजो पशाखा प्राणोपरांश्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणम अच्युत तेज्या। सर्वाहरणम अच्युत तेज्या, यदि अच्युत पूजे जाते हैं भगवान तो हरेक की पूजा हो जाती है। और ये श्रीमद् भागवत ने कहा कि जिस तरह वृक्ष की जड़ों को सींचने से तना डाले पत्तियां को जीवन दान मिलता है, और जिस तरह पेट को उदर को भोजन देने से सारे शरीर और इंद्रियों तथा प्रत्यंग जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भगवान की पूजा से भगवान के अंश रूप देवता भी प्रसन्न ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जब भगवान को स्थापित करते हैं इसलिए दूसरे देवताओं की पूजा अनिवार्य है ही नहीं, आवश्यक है ही नहीं। यह भागवत का अर्थ, यज्ञ संपन्न करने का अर्थ है भगवान की पूजा करना। यहां पर भगवान ने भगवान की पूजा की, भगवान ने भगवान की पूजा की। अरे एक कितने भगवान हो सकते हैं? कोई होता नहीं, एक ही होता है भगवान। तो स्वयं भगवान अपने आप की पूजा कर सकते हैं उस पर हमें संदेह रखने की आवश्यकता है? यदि है तो पहले समझाओ कि कैसे समझ सकते हैं। भगवान आत्मानम आत्मम इज्जे, भगवान ने अपने द्वारा अपनी पूजा कराई, इसलिए आचार्यों को रखा कि देख मैं अपनी पूजा कर रहा हूं तो बैठ सामने देख, चलो निर्देश कर, हम अपनी पूजा कर रहे हैं। देखो भगवान में ताकत है ऐसे कहने की। हां किंतु इससे यह मायावाद दर्शन की पुष्टि नहीं होती जिसके अनुसार मनुष्य अपने आप को भगवान मानता है। मायावादी लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं, जो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार आत्मा सो परमात्मा कहकर खड़े हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही है, यानी कि जितने आत्म साक्षात्कार कर लिया है मानो भगवान है। इसलिए नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, जो आए सबको नारायण बनाते, क्योंकि मैं भी नारायण हूं ना, मैं जानता हूं मैं नारायण हूं। शायद आप नहीं जानते होंगे कि आप भी नारायण, लेकिन मैं तो कह सकता हूं आप नारायण। इसलिए कभी कभी ऐसे लोग मायावादी लोग दावा करते हैं, अरे आप में भगवान है मैं देख सकता हूं, ऐसी बातें करते हैं, लेकिन शास्त्र का आधार नहीं। मायावादी अपनी पूजा कराने के लिए दूसरों के पास पूजा कराने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, अपने अहंकार से वो परम पद पर पहुंचे माने जाते हैं, लेकिन अव्यक्त यानी कि भगवान को नकारते हैं, भगवान निर्गुण निराकार है करके इनका त्याग करते हैं, भगवान के व्यक्तित्व का त्याग करते हैं। ये तो मूर्ति है, भगवान थोड़े हैं। अरे भाई मूर्ति नहीं है तो आया क्यों यहां? वो कहते हैं नहीं भगवान सर्वत्र है, तो सर्वत्र है तो मूर्ति में क्यों नहीं? भगवान के व्यक्तित्व की उनको परिचय नहीं होने के कारण ये बकवास करते रहे, न तो शास्त्र का अनुमोदन होता है न कुछ है। अब यहां रामचंद्र जी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ये कोई फालतू आदमी नहीं बोल रहा। सुखदेव गोस्वामी की प्रतिष्ठा देखो, 12 महाजनों में इनकी महत्ता है। इनके पिता व्यासदेव है, व्यासदेव से सीधे ही उन्होंने भागवत सुना है और भगवान का परिचय माता के गर्भ में पहले ही कर दिया है। 16 साल तक माता के गर्भ में रहे, बाहर ही निकलना नहीं चाहते कि माया में मैं नहीं फंसू, आना ही नहीं चाहता हूं। तब कृष्ण भगवान ने गारंटी दी कि तुझे कोई छुएगा नहीं, तब बाहर निकले, फिर भी भरोसा नहीं था और दौड़ने लगे भागने लगे। तो व्यासदेव पुत्र आसक्त है गृहस्थी है, उनको दौड़ना पड़ा पीछे, ओ बेटा खड़ा रहे, अरे तेरा तो काम है मेरे पीछे, मेरा वंश तो चलो छोड़ो लेकिन मेरे पास जो ज्ञान है कौन बहाएगा। तो व्यासदेव ने स्वयं सुखदेव गोस्वामी को जब भगवान के चरित्र के गुणगान गाने लगे तब वो रुके, नहीं तो परवाह ही नहीं थी। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी यहां बोल रहे हैं कि भगवान ने अपनी पूजा करवाई, खुद ने अपनी पूजा करवाई और दूसरों के निर्देश में, जो शास्त्र के अनुसार निर्देश देता है वो आचार्य होता है। वो कह रहे हैं कि जीव सदैव भगवान से भिन्न होता है, इसीलिए अपने आप को भगवान मानना बेवकूफी है। ऐसे लोग साहस तो करते हैं लेकिन दुस्साहस होता है। दुस्साहस यानी साहस मीन्स एडवेंचरस, दुस्साहस यानी कि बेवकूफ बनकर अंधा अंधी दोष रख आगे बढ़ना। विभिन्नांश कभी भी भगवान नहीं हो सकते, यद्यपि कभी कभी मायावादी भगवान द्वारा की गई अपनी पूजा का अनुकरण करते हैं। भगवान कृष्ण हर प्रातः गृहस्थ के रूप में अपना ध्यान करते थे, अपना ही ध्यान करते थे। द्वारका की लीला में यही भागवत में आता है, नारद मुनि जांच पड़ताल करने जाते हैं कि ये भगवान देखो ना एक है 16108 रानियों के साथ शादी कर चुके हैं, वो कैसे बेचारे का जीवन बिता होगा, कोई कितनी खींचतान करता होगा, घर में कितना झगड़ा होगा, उसकी कल्पना में आता नहीं था। तो उन्होंने देखा चलो मैं जाकर देखा, तो 16108 रानियों के अलग अलग महल थे। एक महल में भगवान को इस ढंग से एक उत्तम सदगृहस्थ के रूप में बर्ताव करके देखा, दूसरे घर में कोई और ही देखा। इसी तरह बहुत सारे महलों में वो जा चुके और भगवान सभी जगह विशिष्ट लीलाएं कर रहे हैं और देखकर अचंभे में आ गए। गोपियों के साथ रास खेलते भगवान ने 108 गोपियों के साथ अपना अपना स्वरूप रखा था साइमल्टेनियसली। तो क्या 16108 के साथ नहीं रख सकते क्या? भगवान अपना निजी स्वांश के रूप में विस्तार करते हैं। जब भगवान जैसा ही दिखता है और भगवान ही होता है, भगवान और भगवान के विस्तारों में इसलिए अभेद माना जाता है। यहां यज्ञ जो विष्णु है रामचंद्र से अभेद है और दोनों के गुण हैं आध्यात्मिक हैं, वो सच्चिदानंद गुणों से यज्ञ में स्थापित है, सच्चिदानंद गुणों से मनुष्य जैसे शरीर धारण करने वाले भी स्थापित है सच्चिदानंद गुण। हम लोग सच्चिदानंद गुण के अंश होते हैं, हम भौतिक गुण में स्थापित हैं, ये हमारी इच्छा है। इसलिए हम चाहे लाख करें उपाय, हम भगवान तो बन नहीं सकते, चाहे हम मायावादी फिलोसफी के आधार पर अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और पूजा के लिए योग्य अपने को समझते हैं और जबरदस्ती से करवाते हैं मान प्रतिष्ठा लाभ इत्यादि के लिए, तो वो खोखली होती है। क्योंकि फिलोसॉफी में तो ये बताया गया है कि हर एक जीव विभिन्नांश है, विभिन्न विशिष्ट रूप से उनको भिन्नता दी गई है। एक तो ईर्ष्यालु है, जूठा अनुकरण करने के लिए हमेशा चाहता है। द्वारका में कृष्ण भगवान थे तब एक पौंड्रक नाम का दुष्ट आया, उसने विष्णु जी के जैसे चार हाथ किसी के उठाकर ट्रांसप्लांट करवा दिए थे। वहां भी ट्रांसप्लांट सर्जरी होती थी, विष्णु जी ऐसे चार हाथ और खाली थे। पौंड्रक कह रहा है कि मैं विष्णु हूं और तू जूठा है कृष्ण, तूने मेरे सारे हथियार चुरा लिए हैं, चल ताकत हो तो आ जा लड़ने के लिए। वो अपना सैन्य लेकर आया, तो विष्णु होते खाली हाथ कैसे हो सकते हैं? लेकिन इसने दुस्साहस किया, तब भगवान कहते चल ले भैया तुझे मानता हूं, लड़ाई नहीं करना, ले ये गदा ले जा, ये चल ये कमल ले जा, अभी शंख भी ले जा और चक्र भी ले जा, जब चक्र छूटता है तो चार हाथ काट के वापस आ जाता है। ट्रांसप्लांट सर्जरी फेल कर देते हैं भगवान, क्योंकि चक्र तो उनके हाथ से ही छूटता है और वही बुलाते तब आता है, नहीं तो आता ही नहीं, बिना काम किए आता नहीं। दुर्वासा मुनि को भी ऐसा पर्चा मिल गया था, चाहे कितना अहंकारी क्यों हो, लेकिन यह स्पष्टता के लिए है कि जब भगवान है भगवान की सत्ता को कोई चुनौती दे नहीं सकता, कोई चैलेंज नहीं दे सकता। तब विभिन्नांश कभी भगवान नहीं हो सकते, यद्यपि कभी कभी मायावादी भगवान द्वारा की गई अपनी पूजा का अनुकरण करते हैं। भगवान कृष्ण हर प्रात ग्रस्त के रूप में अपना ध्यान धरते थे और इसी तरह भगवान रामचंद्र जी ने भी स्वयं को तुष्ट करने के लिए यज्ञ संपन्न किए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि सामान्य व्यक्ति अहम ग्रह उपासना विधि के अनुसार भगवान का अनुसरण करें। यहां पर ऐसी अवैध पूजा की संस्तुति नहीं की गई है। आपको पता होगा ये सोहम वाले जो हैं अपने स अहम यानी कि जैसे भगवान है वैसा ही मैं हूं तो उसको सोहम कहते हैं। हाँ, एक बार वो लोग चलो अनुभूति कर चुके हैं वही मैं हूं अहम ब्रह्मास्मि सोहम तत्वमसि सोहम एक करके खुद को भगवान बना देते हैं। लेकिन फिर भी वो देखते हैं कि हम सोहम में मानते हैं हमारा तो कोई मंत्र है ही नहीं हम अपने आप में मानते हैं हमारा तो कोई मंत्र नहीं है तो चलो चुरा ले कहां से ले बोलो हरे सोहम 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 हरे 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 मोहन 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 हरे हरे अरे मोहन की जान झोड़ ये कहां से बना रहा है न तो शास्त्र का हाँ, कोई उल्लेख है न साधुओं की परंपरा में ये आता है ये तो मैन्युफैक्चरिंग धंधा बना दिया। इसी तरह भगवान को बारे में भगवान के बारे में ना समझ होने का हमेशा अब हम प्रदर्शन करते रहते हैं। तो जब कोई पूछता है कि ए भगवान रामचंद्र जी को अपना यज्ञ संपन्न करने की क्या आवश्यकता होगी क्यों तेरे घर का कानून है क्या है? भगवान की भगवत्ता जानता नहीं है? यदि हम कहते कि तुझे खाने के लिए क्या आवश्यकता हुई तो अपने ही पेट भरेगा ना अपने में ही डालेगा ना दूसरे का पेट भरेगा तो तुझे संतोष होगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत का ये जो श्लोक है यथा तरोर मूल निश्चनेन जैसे तरु यानी कि वृक्ष वृक्ष के मूल में पानी डालकर उसकी शाखाएं उपशाखा पत्ते फल इत्यादि सभी में पानी पहुंचता है जिस तरह पेट में अन्न जाने की तरह सारे अंग को पोषण मिलता है उसी तरह भगवान जो सब का कारण होता है वो मूल है उसमें हमें ध्यान लगाना चाहिए चित लगाना चाहिए भक्ति करनी चाहिए शरणागति होनी चाहिए। हाँ, कोई फालतू पर नहीं बने बनाए पर नहीं सिर्फ एक भगवान की बात करते हैं। हाँ, लेकिन ना समझ होना हाँ, अपनी जिम्मेदारी होती है दूसरों की नहीं। हम कब तक ना समझ रहेंगे सही? तो ये सुखदेव गोस्वामी द्वारा रामचरित्र में जो आदर्श है कि भगवान अपनी पूजा करते हैं तब लोग झगड़ने लगते हैं ए शिव जी महान है देखो रामेश्वर में भगवान ने शिव जी की पूजा की थी तो क्या रामचंद्र मामूली आदमी थे और शिव जी भगवान थे कि उसको पूजा करने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, रामचंद्र जी परम ब्रह्म है परम ब्रह्म होते हुए इनके विस्तार जो देवता हैं, है तो देवताओं को भी वो अपना विस्तार समझते हैं ऐसे नहीं कि देवता स्वतंत्र होते हैं। शिव जी भगवान से कभी स्वतंत्र नहीं होते यदि कोई मानता है या भगवान के नाम के तुल्य शिव जी को या शिव जी स्वतंत्र हो ऐसा मानता हो तो भगवान के नाम पर अपराध चलता है। गलत फहमी नहीं करना गलत मान्यता से हम अपनी भक्ति में विकास नहीं कर सकते इसीलिए समझने की जिम्मेदारी हमारी ही होती है। हाँ, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयान कोई। हाँ, हम कितना पढ़ते जा रहे हैं लेकिन भक्ति के बिना हमारी कोई सिद्धि होती नहीं कोई अर्थ की भी प्राप्ति नहीं होती जो भगवान का नाम नहीं लेता। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जो नहीं लेता उसका मनुष्य जन्म भी शुरू नहीं हुआ यूं बता। मनुष्य की एकमात्र जो विरासत है उसकी चेतना और वो भगवान की तरफदारी वाली चेतना ही है। इसकी विरासत जो हमेशा बनी रहती है और साथ में जाती है, बाकी का सब छोड़ना पड़ता है। यहां जब हम नहीं है उसे बहकावेने से क्या फायदा है, जो हम हैं उसको नकारने से क्या फायदा। पशु वाला जीवन, पशु नहीं जानता कि वो कौन है, मनुष्य तो जानता है कि वो भगवान का अंश है, उसमें इतनी चेतना है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वो जन्म से नहीं जानता, इसलिए भगवान को बोलने की आवश्यकता पड़ती है कि देख तू मेरा बेटा है। भगवान कहते हैं आत्मा को, जीव को कहते तू मेरा बेटा है, तू मेरा अंश है और सनातन है। हम समझते हैं कि नहीं तो मेरा मम्मी पप्पा का बेटा हूं। हाँ, अरे मम्मी पप्पा के भी कोई तो पिता होंगे और पिता के भी पिता होंगे, कोई अकेला कहां से आ गया। तो अंत में तो भगवान ही पैदा करने वाला है। हाँ, इसीलिए भगवान प्रपितामह कहलाते हैं। हाँ, सारे पितामहों के भी पितामह। तो माता च पिता तमेव, भगवान दोनों माता और पिता। बाद में दूसरे संबंध आते हैं, पहले माता पिता का संबंध भगवान के साथ होता ही। तो हमें ये स्पष्टता मिलती है। अब आगे बढ़िए, जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में आहुति देते देते संकल्प करते हैं, ये सारी सृष्टि के मालिक भगवान अपने प्रीति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या के राजा हैं तो अपने अधिकार में से कह देते हैं चलो। हाँ, भगवान रामचंद्र जी ने होता को, यानी कि यज्ञ में जो आहुति देता था तो उसको पूर्व दिशा दी, ब्रह्मा को संपूर्ण दक्षिण दिशा दे दी, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा और सामवेद के गायक उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। इसी प्रकार उन्होंने अपना साम्राज्य दे दिया। अरे ऐसा यज्ञ में सब त्याग कर दिया तो राजा कैसे, अयोध्या में तो 11,000 साल तक राज किया, लेकिन किस ढंग से राज करना है। अभी देखो ये जो सारे आचार्य और यज्ञ में भाग लेने वाले जो होता इत्यादि थे, तो तत्पश्चात यह सोचकर कि ब्राह्मण लोग निष्काम होते हैं अतः उन्होंने सारे जगत का स्वामी होना चाहिए, तो रामचंद्र जी ने पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण के बीच की भूमि जो थी वह आचार्य को दे दी। यानी कि सारा जगत भौतिक जगत किसको दे दिया, आचार्य को दे दिया। ये ब्राह्मण लोग जो सर्वस्व दान देने के बाद रामचंद्र जी के पास उनके निजी वस्त्र तथा आभूषण बचे, भगवान रामचंद्र जी ने अपने शरीर पर थोड़े आभूषण और वही रखे थे तो वही बचे, बाकी का सारा दान में दे दिए। तो उसी तरह सीतारानी की पास भी उसकी नथुनी के अतिरिक्त बिल्कुल नहीं बचा था, सीता के पास अपनी नथुनी के अलावा कुछ सारा दे दिया था रामचंद्र जी ने। तो यज्ञ का सारा जो सारे जो जुड़े हुए थे ब्राह्मण, भगवान रामचंद्र जी की ये महत्ता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, क्योंकि वे ब्राह्मण के प्रति अत्यंत वत्सल एवं अनुकूल है। भगवान का मूल नियम है नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यदि जगत के कल्याण के लिए जब भगवान अवतरते हैं तो दो सिद्धांत पर, के ब्राह्मणों की रक्षा या ब्राह्मणों का महत्व और गैया की रक्षा और गैया का महत्व, ये दोनों स्थापित करते हैं। तो ये सारे ब्राह्मणों ने क्या किया, देखो भगवान का इतना प्रेम उन्होंने पाया कि सब कुछ दे दिया। तो अतः ये ब्राह्मण द्रवित होकर यानी कि हृदय से गदगदित होकर दान में सारी संपत्ति भगवान को लौटा दी है? और बोले, क्या बोल रहे हैं देखो ब्राह्मण लोग, कि हे प्रभु आप सारे विश्व के स्वामी हैं, आपने हमें क्या नहीं दिया, आपने हमारे हृदय में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अंधकार को दूर किया है, यही सबसे बड़ा उपहार है, हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। ये ब्राह्मण वर्ग होते हैं। तो उसी तरह प्रार्थना करते कि नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कंठ मेध से उत्तम श्लोक अधूर्याय न्यस्त दंडार पितांग्रे, कि हे प्रभु आप भगवान हैं और आपने ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव स्वीकार किया है, आपका ज्ञान तथा स्मृति कभी चिंताग्रस्त नहीं होते, आप इस संसार के विख्यात पुरुषों में प्रमुख हैं और आपके चरण कमल की पूजा अदंडनीय मुनियों द्वारा की जाती है, हे रामचंद्र आपको हम सादर नमस्कार करते हैं, आपकी सर्वोपरिता ये अभी देखो रामचंद्र जी का ये सारा वृत्तांत है, राज्य कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अब एक बार जब भगवान रामचंद्र रात्रि में किसी को बताए बिना वेश बदलकर छिपकर अपने विषय में लोगों का अभिमत जानने के लिए घूम रहे थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी सीता देवी के विषय में कुछ अनुचित बातें कहते सुना। वह व्यक्ति अपनी कुलटा पत्नी से कह रहा है तुम दूसरे व्यक्ति के घर जाती हो अतः तुम कुलटा तथा दूषित हो, अब मैं और अधिक तुम्हारा भार नहीं वहन कर सकता, भले ही रामचंद्र जैसा स्त्री भक्त पति सीता जैसी पत्नी को स्वीकार कर ले, मैं उनकी तरह स्त्री भक्त नहीं हूं, अतएव मैं तुम्हें फिर से नहीं रख सकता। ये सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से ये वचन निकल रहे हैं। कोई उल्टा पुल्टा कर बोले तो मत समझना, क्योंकि समझ आएगी। सुखदेव गोस्वामी जैसे समझाते हैं वैसे हमें ऐसे चरित्र पर लांछन लगना, और रामचंद्र जी जो परम सत्य की मूर्ति है सत्यम परम धीमे ही तो वो हमें समझा सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अल्पज्ञ तथा गणित चरित्र वाले व्यक्ति अंटशंट बोलता रहा, ऐसे धूर्तों के भय से, ऐसे धूर्तों के भय से, भय शब्द का उपयोग किया है। भगवान रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता देवी का तब परित्याग किया जब वे गर्भिणी थी, इस तरह सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में चली गई। समय होने पर गर्भवती सीता देवी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जो बाद में लव तथा कुश नाम से विख्यात हुए, उनका जात कर्म संस्कार वाल्मीकि मुनि द्वारा संपन्न हुआ और सभी भाइयों के भी दो दो पुत्र की वंशावली बता देते हैं। लेकिन ये जो बातें हमें असमंजस में डालती हैं कि रामचंद्र जी भय के मारे सीता देवी का त्याग करते हैं, भयम स्वयं भया विनिषेत, यानी कि भय स्वयं भयभीत होकर भगवान के पास खड़ा नहीं रहता, तो यहां भगवान को भय कैसा सताता, कौन सा भय। भगवान रामचंद्र जी ने परम सत्य जो स्वयं है वो परम सत्य की स्थापना करने के लिए, परम सत्य हमें धर्म में मिलता है, तो राम राज्य में परम सत्य के अलावा कुछ टिकता भी नहीं। यदि ऐसा प्रसंग हो तो कौन सा भय, परम सत्य पर कोई भी लांछन यदि आने लगे तो समझना कि नाश का समय या चले जाने का समय आ गया है। रामचंद्र जी ने अपनी लीला समाप्त करने के लिए ये एक छोटा सा बहाना ढूंढ लिया। जैसे कृष्ण भगवान ने भी अपने स्वधाम जाने से पहले एक बहाना ढूंढा था, पता है ना? एक जरा नामक बूढ़ा शिकारी जब भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रभास पाटन में बैठ रहे थे, क्योंकि उन्होंने संकल्प कर लिया था कि मेरी ये सारी जो यादव की जो टोली है यानी कि वंशज है मेरे, तो करोड़ों की संख्या में वो पृथ्वी का भार बढ़ा रहे हैं। जिनको पैदा करने वाले वे थे। भागवत में यह कहा जाता है कि भगवान की 16,108 रानियों हर एक ने 10-10 पुत्र पैदा किए हैं और हर एक 10-10 पुत्रों ने और 10-10 पुत्र पैदा किए। तो जब भगवान 125 साल की अपनी पृथ्वी की आयुष्य तक वहां द्वारका में रहे तो यादवों की संख्या कितनी बढ़ गई होगी। और ऐसे प्रसंग से इन लोगों को कौन मार सकता है जो भगवान का सारा विस्तार है। भगवान ने अपने आप का विस्तार इस वंश में किया है, जब इनको मारने के लिए किसकी सामर्थ्यता है। तब भगवान कहते कि मैं जा रहा हूं, ये लोग क्या करेंगे, चलो मैं उनको भी अंदर अंदर लड़वा मारू, बहाना बना दिए। और खुद जाने के लिए वो जरा को बहाना बता दिया। तो जरा ने देखा कि भगवान के दाहिने पग की अंगूठी में एक कोई हीरा चमक रहा है, तो हिरण की आंख समझकर उसने तीर मारा, थोड़ा लहू निकलने लगा। जबकि कुरुक्षेत्र युद्ध में कितने बाण लग चुके थे भीष्मदेव के और इतना लहू भी बता रहे हैं, फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की। न तो ऐसा समझा है कि अरे कुछ घायल हो गए हैं, दवाई करनी पड़ी, पाटापिंडी करनी पड़ी, ना ना ना, वहां तो वो समझाते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जैसे कोई स्त्री अपने पति का चुंबन करती है तो हर एक बाण भगवान के शरीर को चुंबन करता, ऐसा बताया। तो ये बूढ़े जना व्यर्थ शिकारी के बाण को पांव में यदि चोट लगती है तो कौन सी बड़ी बात होगी, लेकिन भगवान ने क्या चमत्कार किया। वैसे कोई मरे नहीं है, अपने स्वधाम जाने की इच्छा उन्होंने कहा तो सब पार्षदों को बुला दिया। सर्वप्रथम चार उनके जो आयुध हैं इनको व्यक्त मूर्त स्वरूप दिया, मूर्तिमन स्वरूप वो आए, चलो रास्ता क्लियर करो, हम अपने स्वधाम में जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत ये कहते हैं कि कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, जब वो जाते हैं तो उनका धर्म भी साथ में जाता है, ज्ञान भी जाता है और सभी इनके साथ जो जो आए हैं सभी चले जाते हैं। पहले भेजकर लीडर बाद में जाता है, सही ना? लीडर मस्ट गो द लास्ट टू डिसअपीयर। कलयुग में उल्टा लीडर पहले जाएगा मरेगा, क्योंकि वो लीडर नहीं है, मिस लीडर है। क्योंकि मिस लीडर कौन होते हैं पता है? वो आगे सबको भेजता है, जाओ लड़ो, पहले तुम मरो, अंत में मैं मरू। ये बहाना बना दिया। आजकल के लीडर पीछे रहते हैं, दूसरों को मरवा डालते हैं, सही ना? भगवान रामचंद्र रावण को मारने के लिए आगे आए और मारा। जो आगे रहता है वो लीडर, पीछे रहता है वो लीडर नहीं होता, वो मिस लीडर होता है, सही? तो यहां हम देख सकते हैं कि भगवान किस तरह एक व्यक्ति अपनी पत्नी को उल्टा कहकर कहता है कि रामचंद्र जैसा मैं स्त्री भक्त नहीं हूं जो पराए घर गई सीता को भी स्वीकार कर सकते हैं। पहले तो सीता का रामचंद्र से बिछुड़ने का प्रश्न होता ही नहीं, क्योंकि भगवान और भगवान की अंतरंग शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन नाटक के लिए कोई अलग होता है तो क्या अलग होता है, वेश पलटा कहां देखते हैं ये लोग कि ये भगवान की आत्मशक्ति जो आत्म माया है वो बहिरंगी माया में पलट सकती है कब भी चाहो। उसकी भी परीक्षा है, जब अग्नि परीक्षा हुई तब की थी, तो माया सीता भस्म हो जाती है और असली सीता भगवान को प्राप्त होती है। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मैं परम सत्य पर कोई लांछन नहीं लगा सकता, परम सत्य मैं स्वयं हूं, मैं किसी का भी बुरा सुनने के लिए यहां नहीं आया। जो बुरा बोलते हैं इनको तो नाश हो चुका है, लेकिन ये छोटा व्यक्ति मामूली आदमी यदि ऐसा कह रहा है तो चलो इसको सीरियस मान लेते हैं, इसमें कोई भगवान में कुछ कमी है ऐसा तो नहीं सोचा जा सकता। भगवान बहाना बताते हैं, चलो ये प्रसंग द्वारा अभी समझो कि परम सत्य की अनुभूति करनी है तो परम सत्य कौन है क्या है उसकी स्वतंत्र इच्छा से समझने के लिए हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। भगवान को हम अपनी इच्छा से नहीं समझ सकते, भगवान को समझने के लिए हमें भैया लंबा पांव मत करो भगवान के सामने, तो हमें भगवान के टर्फ पर आना पड़ता है और खेलना पड़ता है। यदि भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की लिए जो समझने की जो सिस्टम बनाई है उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है, वो कृष्णानुशीलनम कहते हैं। भगवान को क्या अनुकूल है वो देखने के लिए भक्ति की आंखों चाहिए, तो उत्तम भक्ति बन जाएगी। तो यहां भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत गहराई पूर्वक सुखदेव को स्वामी समझाते हैं। ये समझदारी ये चाहे कितनी छोटी मात्रा में भी क्यों न हो लेकिन जीवन तार सकती है। जबकि हम कथा सुनते अपने कान भी फूट जाते हैं फिर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं आता, वो हम अपनी अपनी थोड़ी सी छोटी सी बुद्धि से भगवान को नापने का प्रयत्न करते हैं तब ऐसा हाल होता है। कभी भी हमें अपने ढंग से नहीं सुनना चाहिए, अपने ढंग से भक्ति नहीं सीखनी चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पाद तयात कल्पते, जो अधिकृत शास्त्र प्रमाणभूत नहीं है ऐसी भक्ति समाज में उपद्रव पैदा करती है। यहां हम फिजी में खास करके देखते हैं, ब्रिटिश गायाना में भी देखते हैं और साउथ अफ्रीका में भी देखते हैं, अपने भाई करीबन चार पांच सदी से पीढ़ी से बाहर हैं, धर्म का कोई आधार नहीं है, इसीलिए वहां ज्यादा पलटा हो रहा था। लोग पवित्र बनने के बजाय अपवित्रता ग्रहण कर रहे हैं, थोड़ी सी धार्मिक मान्यता के कारण उन्होंने यदि रामायण को स्वीकारा है तो लेकिन ये रामायण के पीछे भी पवित्र होने की भावना को दूषित करने वाले कई ऐसे हमें उदाहरण पाए जाते हैं जो गुमराह करते हैं और भक्ति की विशुद्धि न होने देने के लिए वो अपनी बुरी आदतें बनाते रहते हैं। इसे मनुष्य को वास्तविक लाभ नहीं होता है, वो निर्विवाद सत्य है। पंडित ज्वाला प्रसाद ने जो सटीक तुलसी रामचरितमानस लिखा है यानी कि उनका अनुवाद है, उसने तो सिर्फ तुलसी रामायण सीधा लिया है जैसे था, लेकिन वो शंका व्यक्त करते हैं। उसकी प्रस्तावना में आप पढ़िए कि बहुत सारे लोगों ने उनका सटीक भाषांतर उठाकर अपने नाम से बेच रहे हैं और घुसपैठी करी है कि कई चीजें बदल दी, ऐसा वो स्वयं लिखते हैं। हाँ, जो हर एक धर्म में ऐसा होता है काल के क्रम से, तो यहां भी हुआ है। लेकिन हमें तो उससे भी एक और ताज्जुब बात बताई जाती है कि तुलसी रामचरितमानस का महात्म्य लिखने वाला कोई गोपाल दास करके हैं, वो तुलसीदास ने तो रामायण 1631 में लिखी और अभी 1908 यानी कि अभी की हालत में 100 साल पहले ही, ये 2007 हो गई, 1908 100 साल पहले ही एक गोपाल दास ने तुलसी महात्म्य, ये रामचरितमानस का महात्म्य लिखा। जनरली महात्म्य तो पहले लिखा जाता है, बाद में ग्रंथ प्रस्तावित होता है। आप भागवत देखिए, हाँ, और भी देखिए, पद्म पुराण में भागवत की कथा आती है और भागवत तो अंत में लिखा गया, और भागवत की महत्ता तो सब जानते हैं पहले से। तो यहां ये गोपाल दास उल्टा व्यवहार कर रहे हैं कि 1908 में उन्होंने ये लिखा, उसमें भी अजामिल जैसे चरित्र का वर्णन आया ये रामायण की महत्ता बताने के लिए। और वहां लिखते हैं कि चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, हाँ, जिसके घर में ये रामायण पड़ी है पढ़ता है या ये तो दूसरी बात है, पड़ी है, उसके घर की चौकीदारी हनुमान जी करते हैं और यमदूत को ऑर्डर दिया गया कि ऐसे घर में मत जाना, चाहे कितना भी पापी, मांस खाने वाला हो और नशा करने वाला हो। यानी कि ये कौन से शास्त्र में से लिया है, ये कौन सा सिद्धांत है, ये कहां से आया, ये कोई शास्त्र सुसंगत बातें नहीं। यानी कि हम चाहे कितने भी गंदे हो लेकिन अपनी मान्यता के अनुसार हम भगवत धाम में जाएंगे, हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारा। अरे भैया, अजामिल का उद्धार ऐसे कहां हुआ है? अजामिल की भी स्टोरी यही स्कंद में आती है। अजामिल की स्टोरी इसी स्कंद में आती है। अब जब रामचरितमानस रामायण का चरित्र पढ़ रहे हैं, तो उसमें बताया गया है कि अजामिल ब्राह्मण था और मंदिर में पूजा सामग्री इतना नियम था, और एक दिन उसकी दृष्टि बगल के रास्ते में कई घने में एक स्त्री, कोई वेश्या थी, कोई पुरुष के साथ व्यभिचार कर रही थी, उससे उसका मन इतना चंचल हो गया कि वो स्त्री को उठाकर अपनी पत्नी होते हुए भी ले आया और उसके साथ व्यभिचार कर रहे, और इतना बुरा हुआ, खून मर्द इत्यादि सब में पारंगत था, लूटपाट अनिति से द्रव्य कमाता था, हा? लेकिन था ब्राह्मण। अब हुआ क्या कि 80 साल में उसे बेटा हुआ, 80 साल की उम्र में भी बेटा बनता है, तो वेश्या कह रही कि हम तो मरने की तैयारी कर रहे हैं, अब बेटा पालेंगे, चलो इसकी रक्षा के लिए कोई साधु के आशीर्वाद चाहिए। इसी प्रलोभन से गांव में कोई साधु आए थे तो मिलने गई और विनती की कि चलो हमें आशीर्वाद दे दो, तो साधु के कि एक शरत पर देंगे। तो कौन सी शरत? जो बेटा आए नाम नारायण रखना, और कुछ नहीं, और मुफ्त में हो गया काम, न पैसे देने पड़े न कुछ नहीं। और जब बेटा हुआ नाम रख दिया नारायण, हाँ, अजामिल और नारायण दोनों में इतनी मैत्री हो गई कि दोनों निराश्रित थे, यानी कि छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप पर ही आश्रित रहते हैं, लेकिन बूढ़ा होते हुए भी बूढ़ा दूसरे जवान बच्चों पर आश्रित रहता है, यानी कि दोनों की आश्रितता ऐसी मैत्री करती है कि एक दूसरे को साथ में ही सब कुछ करना पड़ता। अब मृत्यु की बेला जब आ गई, तो यमदूत उसके प्राण को खींचने लगे, तो घबराहट में बोल गया नारायण बचाओ, तो विष्णु दूत आए, बेटा नहीं आए, विष्णु दूत आए। अब विष्णु दूत उनको चैलेंज कर रहे हैं यमदूत को कि हे भैया आपका अधिकार चला गया, अब तो हमारा हो गया। अरे कौन कहता है ये पापी ने तो इतने पाप किए हैं, ये तो हमारे लिस्ट में कब से पड़ा था, अब उठाया है तो आप हमें चुनौती दे रहे हैं, आपका क्या अधिकार है? तो अधिकार कि भगवान सर्वोपरि है, इनका नाम जो लेता है एक बार और मृत्यु के समय में तो हमें उनको ले जाना पड़ता है, यानी कि हमारा अधिकार हो जाता है, हमारे संरक्षण में है। हाँ तो यदि आपको प्रमाण चाहिए तो आपके मालिक से ही पूछो जाओ। विष्णुदूत तो जानते कि यमराज कौन है। हाँ तो यमराज ने कह दिया कि हाँ भैया देखो नारायण तो मेरे मालिक हैं, हम उनके दास हैं, इसलिए इनका कहा मानना पड़ेगा, आप जाओ उसको छोड़ो, तंग मत करो। लेकिन वहां ये बताया कि ये अजामिल का उद्धार नहीं हुआ, उसके दिमाग में अपने पूर्ववत संस्कार जागृत हो गए। पूर्ववत संस्कार जो ब्राह्मण के थे वो जागृत हो गए, उसने सोचा कि मैंने क्या ना क्या कर दिया, अब पछतावा हो रहा है। तो तुरंत उठकर वो जा रहा है, उसको वो मरा नहीं, वो हरिद्वार गया है, हरिद्वार में बाकी की साधना उसने कंप्लीट की, बाद में आया। और हम यदि ऐसा पुरावा दे देते हैं कि जिसके घर में रामायण पड़ी हो और मांस मच्छी खाने वाले पापी भी क्यों ना हो, हनुमान जी उनकी सेवा करेंगे, उनके घर में यमदूत को आने नहीं देंगे, अरे यमराज तो भक्ति के महाजन हैं, सिद्धांत विरुद्ध बात होती है यहां। इसीलिए हम इन तीन देशों में तो हम जा चुके हैं और सभी की ये हालत देखते हैं कि आदतें छोड़ते नहीं और अपनी मान्यता के अनुसार पारायण कराते रहते हैं, पाठ पढ़ा करते हैं, लेकिन हम वही के वही पड़े, हम भक्ति के विकास का कोई अनुभव नहीं कर पाते। क्योंकि ये स्पष्ट हकीकत है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधिन बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद त्याग करते, ऐसी भक्ति या ऐसे धर्म का दिखावा समाज में उपद्रव पैदा करता है। आप चाहे लाख बार आप उसके कानों में भरोगे, कभी कभी कोई तो उसमें तैयार होगा, हाँ नहीं तो एक कावा दावा मंदिर में ही चलता है। हाँ मांस खाओ, रामायण के पाठ के बाद ये करो, तो ये क्यों, ये अज्ञानता कब छूटेगी? क्योंकि हमें कोई समझाने वाला नहीं है, कोई प्रमाण दे नहीं, इसका देखता नहीं, हम जो भी आया इनको साधु मान लेते हैं प्रामाणिकता से, हमें स्वीकारने की कोई दानत नहीं। हम समझ रहे हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, वो अपने धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ये सब ऊपर ऊपर की बातें बनती हैं। वास्तविक धर्म के प्रति हम अज्ञान है, इसीलिए जब प्रामाणिक शास्त्र है, प्रामाणिकता से हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ते ही समझने की आवश्यकता होती है, समझने के बाद हमें जीवन में उतारने की तो अत्यावश्यकता है। हम सबसे यही विनती करते हैं कि आप थोड़ी सी भी भक्ति करो लेकिन यथावत करो, जैसी दी गई है वैसी, इसमें आप पोल्यूशन मत लाओ, तो आपका बहुत बड़ा उपकार बन जाएगा सारे समाज में। चार नियमों का पालन एक कलयुग से बचने के लिए दिया गया है, किसी भी अभक्ष्य भोजन नहीं करना, जिसमें मांस अंडे मछली या मशरूम, किसी भी पर स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करना, और अपनी स्त्री के साथ भी मनोरंजन के लिए कोई ये हमारी पार्टनर है ऐसे भी ख्याल नहीं रखना, ये भी आत्मा है और भगवान की भक्त बन सकती है। जब भगवान गारंटी देते हैं तो हम ये अधिकार उनसे क्यों छीन लेते हैं, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। न तो कोई स्त्री पुरुष पर इस ढंग की जबरदस्ती कर सकता है। सभी भगवान के अंश होते हैं और भगवान कहते हैं कि माम ही चो व्यपाश्रित्य, ये जो पाप योग है स्त्रियों वैश्यास तथा शुद्राचार की परांग, पाप योनि में से भी क्यों न आता हो, लेकिन यदि यथावत अपने स्थान जब पवित्र होकर यानी कि आत्मा के सामने रहता है तब उसका उद्धार होता है, उसे पहले नहीं होता। हमें वास्तविक प्रगति करने के लिए ये सब भगवान के वचनों को उद्धरण करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि ये भागवत में कहा है, ये भगवत गीता में कहा है, ये कोई शास्त्र विरोध नहीं। तो हमें ये सूचनाएं दी जाती है कि जिस तरह हम हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए हाँ वो यथावत ग्रहण करें, ऐसे नहीं कि कोई अन्य हेतु के लिए यदि हम चलो ये भी आया ये भी साधु है वो भी आया वो भी साधु है, एक ये कहता है कोई दूसरा कहता है, इसमें हम भोग बन जाते हैं। हमारा मनुष्य जीवन जो महामूला है हम उसका यथोचित उपयोग नहीं कर पाते। आप सबसे यही विनंती करते हैं कि जो विशुद्ध पद्धति है उसका थोड़ा सा भी आचरण बड़े से भय से बचाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोपयात्, ये भगवद गीता में कहते स्वधर्म का भी थोड़ा सा भी शुद्ध आचरण बड़े से बड़े भय से बचाता है, नहीं तो हम भयभीत रहेंगे भयभीत रहेंगे भयभीत रहेंगे। निर्भय होना है, भगवान के सामने निर्भयता बतानी होती है और अपने जो भाई भयभीत है उनको समझाना पड़ता है, अरे भैया क्यों भयभीत है, ना समझ होकर ही हम भयभीत रहे। जो स्वयं भय भगवान के सामने टिकता नहीं वो डरता है, क्योंकि परम सत्य है भगवान, हम इनके अंश हैं तो हम अपनी जिंदगी इतनी मामूली इंद्रिय तृप्ति के लिए हम गंवा दें वो मूर्खता नहीं तो क्या है। आप सभी का धन्यवाद, किसी को कोई प्रश्न है तो करें। हरे कृष्णा।